ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर रात कनाडा के कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी दो दिन की कनाडा यात्रा पर सवेरे कैलगरी पहुंचे। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और निवेश से जुड़ी चर्चाओं में भाग लेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मिलेंगे और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान वे अल्प विकसित और विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर भी जोर देंगे। श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित अन्य नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल क्रोएशिया की राजधानी जागरेब पहुंचेंगे। क्रोएशिया में भारतीय समुदाय के लोगों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली क्रोएशिया यात्रा होगी।
क्रोएशिया में 17,000 से अधिक भारतीय रह रहे हैं। यहाँ रह रहे प्रवासियों में उद्यमी, आईटी पेशेवर, छात्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर प्रवासी समुदाय में काफी उत्साह है। यह उनके योगदान और उनकी बढ़ती साख को एक स्वीकृति है। वे इस पहली यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के एक बड़े अवसर के रूप में देखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ेगा। जागरेब क्रोएशिया से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं संजीव सिंह।
विश्व के G7 समूह के नेताओं ने इसराइल और ईरान के बीच बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। G7 के नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। वहीं ईरान को क्षेत्र में अस्थिरता और आतंक का प्रमुख स्रोत बताया है। G7 समूह ने क्षेत्रीय तनावों के बीच नागरिकों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। ईरान की राजधानी तेहरान में भारतीय दूतावास के प्रयासों से भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रबंध किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में बताया गया है कि जिन नागरिकों के पास आने जाने की अपनी व्यवस्था है, उन्हें भी स्थिति को देखते हुए शहर से बाहर जाने को कहा गया है। कुछ भारतीयों को आर्मेनिया से लगने वाली सीमा से ईरान से बाहर निकलने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दूतावास लगातार भारतीय समुदाय के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर नजर रखने और भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इसके लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-118-797 और अन्य नंबर है 9111-2301-2113। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सभी लोगों से तेहरान छोड़ने का अनुरोध किया है। हालांकि राष्ट्रपति ने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज हरियाणा के मानेसर में देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने बताया कि 45 एकड़ में फैले इस कार्गो टर्मिनल में 4.5 लाख वाहन रखने की क्षमता है। उन्होंने ये भी बताया कि अब कुल 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल तैयार हो चुके हैं, जिनमें जल्दी ही सेवाएं शुरू हो जाएंगी। श्री वैष्णव ने रेल सुविधाओं में सुधार और साफ सफाई की दिशा में सरकार के उपायों का उल्लेख किया।
11 वर्षों में मोदी जी ने एक सस्टेन्ड वे में रेलवे के डेवलपमेंट का काम किया है। सबसे पहले रेलवे का बजट बढ़ाया, चाहे स्टेशन को नए तरह के स्टेशन बनाना हो, ट्रेन के अंदर टॉयलेट्स की व्यवस्था तक नहीं थी, वहां से लाके साफ सफाई, नए तरह की टेक्नोलॉजी, नए तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हर तरह से यात्रियों की सुविधा, हर तरह से इंडस्ट्री को कैसे जोड़ना, इन सब पे मोदी जी ने इन 11 वर्षों में बहुत ध्यान दिया।
घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर 0.4% की मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 309 अंक गिरकर 81,487 पर और निफ्टी 102 अंक फिसलकर 24,845 पर आ गया। मौसम विभाग ने आज सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।